पाठ 24, अध्याय 24 और 25।
निर्गमन के पिछले कई अध्यायों में हमने देखा है कि यहोवा ने इसराइल के लोगों के सामने अपनी वाचा पेश की। नूह और अब्राहम के साथ प्रभु द्वारा की गई वाचाओं के विपरीत, जो वास्तव में परमेश्वर के प्रतिज्ञों का रूप थीं, और इसीलिए नूह या अब्राहम द्वारा औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। इसराइल के साथ की जा रही वाचा के लिए औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस औपचारिक स्वीकृति को अनुसमर्थन भी कहा जाता है। तो आइए अध्याय 24 पर जाएं और देखें कि परमेश्वर और इसराइल के बीच इस वाचा को औपचारिक रूप से कैसे अनुसमर्थित किया गया।
निर्गमन अध्याय 24 पूरा पढ़ें। यहोवा मूसा से कहता है कि उसे अहरोन और उसके दो बेटों नादाव और अबीहू और 70 नेताओं, संभवतः इसराइल के मुख्य बुजुर्ग को परमेश्वर के पास जाना है। हम निश्चित नहीं हो सकते कि गिनती 70 सटीक है या प्रतीकात्मक है, क्योंकि इब्रानी साहित्य में इस तरह की गोल गिनती अक्सर प्रतीकात्मक होती है। यह हो सकता है कि 70 वास्तविक गिनती हो और साथ ही यह समग्रता या व्यापकता का प्रतीक हो, अर्थात यह समूह पूरी तरह से इसराइल का प्रतिनिधित्व करता है। सभी को थोड़ी दूरी पर झुककर झुकना है। संभवतः इसका मतलब यह था कि उन्हें सीमा रेखाएं पार नहीं करनी थी, जिन्हें आप यहां इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो वास्तव में साइट पर ली गई हैं और ध्यान से पत्थर की बार से चिह्नित है, जो पवित्र पर्वत को अलग करती हैं जहां परमेश्वर था, घाटी के तल से। केवल मूसा को उस सीमा को पार करना था और माउंट सिनाई पर पैर रखना था। आप में से जो लोग इस कक्षा में अपेक्षाकृत नए हैं, उनके लिए यह सिनाई प्रायद्वीप पर माउंट सिनाई के पारंपरिक स्थल पर नहीं है, बल्कि अरब में एक स्थान पर है, जिसके बारे में अब मैं सोचता हूं कि वह परमेश्वर के पर्वत का अधिक संभावित स्थल है, और वह स्थान जहां संत पौलुस, फिलो, यूसुफ और अन्य लोगों ने कहा था कि पवित्र पर्वत स्थित है। यहां एक मानचित्र है जो दर्शाता है कि वह स्थल कहां स्थित है, और ये तस्वीरें वहां ली गई थी। मूसा ऊपर गया और जब वह वापस नीचे आया तो यह यहोवा के निर्देशों के साथ था कि वह फिर से उन सभी नियमों को सुनाए जो परमेश्वर ने इसराइल को दिए थे, जिन्हें हम निर्गमन अध्याय 19 से 23 में सूचीबद्ध देखते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को वाचा की शर्तों को प्रस्तुत करना था और उन्होंने जवाब दिया, हम मानेंगे। अब चलिए जल्दी से कुछ इब्रानी शब्दों दबर और मिशपत पर फिर से गौर करते हैं, क्योंकि जहां यह निर्गमन 24 का 3 में कहा गया है कि मूसा ने सभी नियम, या शायद आपके बाइबल में शब्द या कानून बोले, मूल इब्रानी कहता है कि मूसा ने लोगों से जो कहा वह परमेश्वर का मिशपत और दबर था। याद रखें कि 10 आज्ञाओं के लिए इब्रानी शब्द क्या था, यह दबर था। 10 दबर अंग्रेजी में 10 शब्द, और अब इसराइल को निर्गमन 20 का 10 दबर मिलने के बाद प्रभु ने कहा निर्गमन 21 के पद 1 में कि वह अब इसराइल को उसका मिशपत न्याय की अपनी प्रणाली देगा, जिसे मैं मानता हूं कि हमें और भी सही रूप से उसका सुसमाचार कहना चाहिए, जो पूरी तरह से उचित होगा, वास्तव में बिल्कुल आवश्यक। मूसा ने लोगों को 10 अध्यायें और फिर निर्गमन 22 से 23 के सभी नियम और विनियम फिर से बताए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे उनका पालन करेंगे। ये उन दिनों में वाचा की पुष्टि करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया थी। हमें बताया गया है कि मूसा ने ये शब्द लिखे थे। कुछ उदार धर्मशास्त्री हमें जो विश्वास दिलाना चाहते हैं उसके विपरीत, तथ्य यह है कि हमें यही बताया गया है कि इस बिंदु तक दिए गए सभी कानून रिकॉर्ड किए गए थे, लिखे गए थे इस समय, बाद में नहीं, याद करके। फिर मूसा ने एक वेदी बनाई। याद रखें, एक वेदी एक स्मारक नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां आप बलिदान करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आम तौर पर एक जानवर का वध किया जाता है, और मूसा ने इसराइल की 12 कबीलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 12 पत्थर स्थापित किए। इन्हें आम तौर पर खरे हुए पत्थर कहा जाता है, जो आम तौर पर परमेश्वर के कार्य के रूप में वर्णित किसी चीज के स्मारक होते हैं। प्राचीन मध्य पूर्व के लोगों के बीच खरे पत्थरों का उपयोग आम बात थी। इसके बाद हम औपचारिक बलिदान को देखते हैं। यह हर मध्य पूर्वी वाचा का एक आवश्यक और मानक हिस्सा है। जानवरों को मार दिया जाता था और फिर आम तौर पर टुकड़ों में काट दिया जाता था, या अधिक शाब्दिक इब्रानी में सही ढंग से विभाजित किया जाता था। हाँ, ये सही है। वचन को सही ढंग से विभाजित करने की अच्छी पुरानी ईसाई कहावत को पूरी तरह से संदर्भ से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि सही ढंग से विभाजित करना बलि के जानवर को ठीक से काटने से संबंधित था। यह बाइबल की व्याख्या के बारे में नहीं था। बलि के जानवर के टुकड़ों को वेदी के चारों ओर व्यवस्थित किया जाता था और फिर आम तौर पर दो वाचा पक्ष कटे हुए जानवर के टुकड़ों के बीच एक साथ चलते थे। हमें नहीं बताया गया कि क्या ऐसा यहां हुआ था, लेकिन यह लगभग अकल्पनीय है कि ऐसा नहीं हुआ। कुछ खून को कटोरे में इकट्ठा किया गया था और इसे लोगों पर छिड़का गया था। कारण, इसका मतलब था कि वाचा का खून उन्हें शामिल करता था या उन्हें ढकता था। दिलचस्प बात यह है कि हमें बताया गया है कि बलि चढ़ाने के लिए युवा पुरुषों को भेजा गया था। कई टीकाएं कहती हैं कि यह जरूरी था कि युवा पुरुषों को चुना जाए, संभवतः इसलिए क्योंकि वे बलि के लिए बैल थे और बैल बड़े और भारी होते हैं। फिर भी बाद के तोरह अंशों में बैलों की बलि का उल्लेख है, जो आम बात थी। बैल के शव को इधर उधर ले जाने के लिए युवा या विशेष रूप से मजबूत पुरुषों का उपयोग करने की कोई सलाह नहीं दी गई है। यहां बताया गया है कि क्यों जिन युवाओं की बात की गई वे कोई साधारण युवा पुरुष नहीं थे, वे ज्येष्ठ पुत्र थे। हम इस अंश में यह नहीं देखते हैं कि वे मजबूत पुरुष थे जिन्होंने भारी उठाने का काम किया जबकि अन्य लोग अनुष्ठान कर रहे थे, बल्कि उन्होंने वास्तव में बलि की प्रक्रिया की। लेवी पुजारियों ने बलि क्यों नहीं चढ़ाई? आखिरकार शायद यही उनका प्राथमिक कर्तव्य था, क्योंकि पुरोहित अभी तक स्थापित नहीं हुई है, जैसा कि जल्द ही हो जाएगा।
पुरोहिताई स्थापित होने से पहले प्रत्येक परिवार अलग अलग उन अनुष्ठानों को करता था जिनका वे पारंपरिक रूप से पालन करते थे, और हम ठीक से नहीं जानते कि इन अनुष्ठानों में क्या क्या शामिल था। पशुओं, खाद्य पदार्थों और पवित्र वस्तुओं की बलि देना सभी जात प्राचीन पूर्वी संस्कृतियों में सामान्य और प्रथागत था, और संभवतः मिस्र में रहने वाले इसराइलियों ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा।
लेकिन सवाल यह है कि प्रत्येक घर में वास्तव में बलिदान और अनुष्ठान किसने किए? हमारा सामान्य उत्तर यह है कि यह सबसे बड़ा पुरुष या पिता या शायद दादा, अगर वह उस बड़े घर में रहता था, होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि यह पहला जन्मा पुरुष था जो इन कार्यों को करता था। याद रखें, ज्येष्ठ का मतलब घर में सबसे वरिष्ठ पुरुष नहीं है। इसका मतलब है कि एक आदमी की पत्नी द्वारा उसके लिए पैदा किया गया पहला बेटा। घर का पिता या दादा जरूरी नहीं कि ज्येष्ठ ही हो। इब्रानी जीवन की यह वास्तविकता बाद में व्यवस्था और फिर गिनतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। ज्येष्ठ पुत्र को कमोबेश परिवार के पुजारी का पद प्राप्त था, लेकिन केवल तब तक जब तक प्रभु ने एक आधिकारिक पुजारी पद की स्थापना नहीं की जो लेवी के गोत्र से आएगा। एक बार पुजारी पद की स्थापना हो जाने के बाद व्यक्तिगत परिवार अपने स्वयं के बलिदान अपनी वेदियों पर अपने स्वयं के तरीकों से नहीं कर सकते थे। इसी तरह महत्वपूर्ण रूप से हजारों इजरायली ज्येष्ठ पुत्रों ने परिवार के पुजारी के रूप में अपना मूल्यवान दर्जा खो दिया, और बाद के तोरह भागों में हम परिवारों की अपनी निजी रस्मों को छोड़ने की अनिच्छा और ज्येष्ठ पुत्रों द्वारा लेवी के गोत्र के कुछ सदस्यों को परिवार के पुजारी के रूप में अपने अधिकारों को छोड़ने के बारे में सूक्ष्म उल्लेख पाते हैं। खैर, मूसा के पहाड़ पर चढ़ने और वापस आने के बाद वाचा की किताब, 10 आज्ञाएं और कानून एक बार फिर पढ़े जाते हैं, और एक बार फिर लोग जवाब देते हैं कि वे आज्ञा मानेंगे। यह वाचा अनुष्ठान की खासियत है। फिर पद 9 में कुछ असाधारण और अप्रत्याशित घटित होता है। परमेश्वर हारून उसके 2 बेटों और 70 बुजुर्गों को सीमा की दीवार पार करने और अपने पवित्र पर्वत पर पैर रखने की अनुमति देता है। बेशक वाचा बलिदान के खून ने लोगों के पापों का प्रायश्चित किया था, और अब उनके प्रतिनिधि परमेश्वर के पास जा सकते थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे और मसीह के साथ है जब हम यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से उसके खून से छिड़के जाते हैं, उसके खून से ढके होते हैं और अब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं उसकी नज़र में शुद्ध, जबकि पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे।
और यह कहा जाता है कि उन्होंने परमेश्वर को देखा, हालांकि यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकता, और जो उन्होंने देखा उसका वर्णन कुछ हद तक वैसा ही है जैसा कि संत यूहन्ना ने 1400 साल बाद देखा होगा, यानी जिस क्षेत्र में परमेश्वर खड़े थे वह कीमती पत्थरों से पक्का था, यह एक दर्शन रहा होगा। यहूदी संत रशबम कहते हैं कि यहाँ जो हुआ वह काफी हद तक वैसा ही है जैसा कि अब्राहम के साथ हुआ था जब परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी। अब्राहम को धुआं उगलने वाले अग्निपात्र के रूप में परमेश्वर का एक दृश्य प्रकट हुआ। जाहिर है कि धुआं उगलने वाला अग्निपात्र परमेश्वर की वास्तविक छवि नहीं थी, और जो लोग माउंट सिनाई पर चढ़ने की अनुमति दी गई थी उन्होंने जो देखा वह परमेश्वर की वास्तविक छवि नहीं थी, और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखने के सामान्य परिणामों के विपरीत परमेश्वर के साथ भोजन किया जो कि विनाश है, यही इस वाक्यांश का अर्थ है, और परमेश्वर ने उनके खिलाफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। अब मुझे लगता है कि हम यहाँ जो देख रहे हैं वह मेमने के महान और भविष्य के विवाह उत्सव की पूर्व सूचना है, जिसके तहत सभी विश्वासी औपचारिक विवाह हमारे वर्तमान सगाई की स्थिति के विपरीत में प्रतिबद्ध होंगे। एक औपचारिक और पूर्ण मिलन मसीह के साथ एक महान औपचारिक भोज के साथ। एक साथ भोजन करना वाचा अनुष्ठान का एक और अनिवार्य हिस्सा है, यह वाचा को पूरा करता है। एक बार फिर मसीह के साथ हमारी वाचा, हमारा मिलन अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह मसीह की वाचा के औपचारिक होने घर 100% पूरा हो जाएगा जब हम जिन्होंने उस वाचा की शर्तों को स्वीकार किया है नासरत के यीशुआ में विश्वास हमारे प्रभु के चरणों में बैठेंगे और मेमने के विवाह उत्सव में उनके साथ भोजन करेंगे। रोंगटे खड़े हो गए है ना।
समारोह समाप्त हो गया था और वाचा अब पूरी हो गई थी। इसे कभी नवीनीकृत नहीं किया गया क्योंकि इसे नवीनीकृत करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। वाचा स्थाई है कम से कम युग के अंत तक।
पद 12 में यहोवा ने मूसा को अपने पर्वत पर वापस बुलाया और उसे 10 शब्द दिए, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर की अपनी उंगली से पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि यहोशू मूसा के साथ ऊपर गया, हालांकि यहोशू का केवल संक्षिप्त उल्लेख किया गया है और उसके बाद उसके बारे में कुछ और नहीं कहा गया है। फिर भी यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने नून के बेटे इसराइल के अगले नेता यहोशू को अलग करने और प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया कितनी पहले शुरू कर दी थी। हारून और हूर को छावनी में प्रभारी छोड़ दिया गया था। हूर हारून का बेटा नहीं था, लेकिन परंपरा कहती है कि वह उसका दामाद था। कम से कम यह तो स्पष्ट था कि हारून के अपने प्राकृतिक बेटों से भी ऊपर हूर हारून का सहायक बनने के लिए विशेष रूप से चुना गया व्यक्ति था।
हमें बताया गया है कि इसराइल के लोगों ने परमेश्वर की महिमा इब्रानी में कावोद देखी, जो पवित्र पर्वत की छोटी पर एक अमिट आग की तरह जल रही थी, वहां से घाटी की तलहटी में जहां 30 लाख लोग डेरा डाले हुए थे, और उस पर्वत की चोटी पर यहोवा की भयानक उपस्थिति से घिरे हुए मूसा 40 दिन और 40 रातों तक रहा। जाहिर है कि उसे सबसे गहन और महत्वपूर्ण शिक्षा मिली जो किसी व्यक्ति ने कभी अनुभव की थी। हालांकि हमें यह भी बताया गया है कि उन दिनों में से पहले 6 दिनों में बादल ने प्रभु की उपस्थिति को छिपाया था और 7वें दिन प्रभु ने मूसा को और निर्देश देना शुरू किया। वे पहले 6 दिन मूसा के लिए एक तरह की तैयारी थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने से पहले आध्यात्मिक चिंतन का समय।
आइए अध्याय 25 की ओर बढ़ते हैं। हालांकि इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं इसका एक प्रकार का परिचय देना चाहूंगा।
अध्याय 24 में निर्गमन के तीसरे भाग का समापन हुआ, जिसे वाचा और व्यवस्था कहा जाता है। अध्याय 25 के साथ हम निर्गमन के एक नए और केंद्रीय विषय चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, जो जंगल के तंबू और उससे जुड़े अनुष्ठानों से संबंधित है। संसार की रचना करने के लिए यहोवा के आरंभिक कार्य
मानव जाति की रचना और आदम का पतन, जल प्रलय जिसने अस्थाई रूप से पृथ्वी को अनियंत्रित दुष्टता से मुक्त कर दिया, पहले इब्रानी के रूप में अब्राहम की कहानी, इज़राइल के गोत्रों के संस्थापक के रूप में याकूब की कहानी, मिस्रीर में इज़राइल की बंदी का इतिहास और अब इब्रानियों का निर्गमन, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। परंतु हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसका महत्व कम है। जंगल का तंबू जो परमेश्वर का सांसारिक निवास स्थान है, मैं आपको बताता हूं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि तोरह के 50 अध्यायों के सभी या कुछ भाग तंबू के निर्माण और सेवा से संबंधित हैं। इसके निर्माण का हर छोटा मोटा विवरण, इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, पहने जाने वाले वस्त्र, धार्मिक अनुष्ठान कैसे किए जाने थे और उन्हें कौन संचालित करेगा, और बहुत कुछ यहोवा ने बार बार मांग के साथ बताया कि इसे उसी नमूने के अनुसार बनाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है। बलि प्रणाली को बहुत ही सावधानी से समझाया गया है, कौन से जानवर विभिन्न बलि के लिए उपयुक्त हैं, किस तरह की बलि किस उद्देश्य के लिए है, जानवर को कैसे मारा और संसाधित किया जाना है, कौन इसका हिस्सा ले सकता है और कौन नहीं, और भी बहुत कुछ। अब कृपया इसे सुने, नए नियम के यहूदी लेखकों ने मान लिया था कि विभिन्न पत्रों और सुसमाचारों, जो अंततः एक बाइबल कैनन में एकत्रित हो गए, के पाठक पहले से ही पवित्र तंबू और बलिदान प्रणाली के उद्देश्य को समझते हैं। नया नियम लेखक एक ऐसे बिंदु से शुरू करते हैं जहां यह तय है कि इसके पाठक पहले से ही इजरायली समाज, परंपरा और पूजा के सभी आवश्यक बिंदुओं से परिचित, जिसमें मंदिर और उसकी सेवाएं, जटिल बलिदान और शुद्धिकरण संस्कार, इजरायल का इतिहास, विवाह और पारिवारिक जीवन शामिल है, काम किया इत्यादि, और यह सब आवश्यक समझ किसी को कहां से मिलती है। अगर कोई उस समाज में नहीं रहता है तो उसे उस समाज के अभिलेखों और उन नियमों को पारखकर और समझकर ही प्राप्त करना चाहिए जिन्हें प्रभु ने उसे नियंत्रित करने के लिए निर्धारित किया था, पुराना नियम। तोरह पूरी तरह से निर्देश के बारे में है, और इसलिए यह है कि तंबू और बलिदान प्रणाली हमें सुसमाचार सिखाती है, यह हमें इसराइल का उद्देश्य सिखाती है, यह हमें यहोवा की पवित्रता सिखाती है, यह हमें सिखाती है कि हमारे पापों की क्षमा के लिए कितनी बड़ी और भयानक कीमत चुकानी होगी। बाइबल में हमें जंगल के तंबू के लिए कई नाम मिलेंगे। इसे पवित्र स्थान कहा जाता था इब्रानी में मिकदाश, मिकडोश, जिसका अर्थ है पवित्र और पवित्र स्थान। इसे तंबू भी कहा जाता था इब्रानी में मिशकन, जिसका अर्थ है निवास स्थान, इस मामले में यहोवा का निवास स्थान। तंबू एक और नाम था इब्रानी में ओहेल, ओएल, जो एक साधारण बेडोइन शैली के कपड़े के तंबू को दर्शाता था। मंडली का तंबू एक और शब्द था जिसका इस्तेमाल इब्रानी में ओहेल मोएड किया गया था। इसका शाब्दिक अर्थ था नियत समय का तंबू। एक और अभिव्यक्ति गवाही का तंबू थी, इब्रानी में मिशकनहा एदुद, गवाही का निवास स्थान, यानी वह स्थान जहां 10 आज्ञाएं रखी गई हैं। इसे जंगल का तंबू और मूसा का तंबू कहा जाता है, जबकि इनमें से प्रत्येक शब्द का सटीक अर्थ तंबू के सार के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। वे सभी अभी भी एक ही संरचना को संदर्भित कर रहे हैं, यहोवा का वह पोर्टेबल निवास स्थान जिसका उपयोग इसराइलियों ने माउंट सिनाई से शुरू करके जंगल में अपने पूरे समय के दौरान किया, और उसके बाद लगभग 400 वर्षों तक, जब तक कि सुलेमान द्वारा एक स्थायी पत्थर और लकड़ी की इमारत नहीं बनाई गई। उस पत्थर और लकड़ी की संरचना को मंदिर कहा जाता था। मंदिर और तंबू दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वे एक ही उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। वास्तव में मंदिर तंबू का एक स्थायी गैर चलने वाला संस्करण था, और अब मंदिर को भी बदल दिया गया है, क्योंकि आज ये नाजुक शारीरिक शरीर जिनमें हम विश्वासी घूमते हैं, वे तंबू, मंदिर व स्थान हैं जहां यहोवा की पवित्र आत्मा निवास करती है। यह दिलचस्प नहीं है कैसे मूल तंबू मोबाइल था एक अस्थाई तंबू, और इसे बदलने के बहुत समय बाद एक बार फिर से परमेश्वर का निवास स्थान, हम एक सीमित जीवन अवधि वाला तंबू, जहां भी वह हमें निर्देशित करेगा जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसराइल 40 वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा, इसलिए यदि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ होनी थी तो परमेश्वर के निवास स्थान को उनके साथ चलना पड़ा। फिर इसराइल प्रतिज्ञा किए गए देश में बस गया, इसलिए परमेश्वर का निवास स्थान उस देश में बस गया। इसलिए यदि आप परमेश्वर के पास आना चाहते थे तो आप इसराइल के मंदिर में आते थे। यीशु से शुरू करके हम प्रभु के मंदिर बन गए, उनका सांसारिक स्वर्गीय नहीं निवास स्थान। इसीलिए जब हम उनका वचन दुनिया में ले जाते हैं तो वे हमारे साथ जाते हैं।
तंबू का एक मुख्य उद्देश्य था एक ऐसा स्थान जो विशेष रूप से स्वच्छ और पवित्र हो, ताकि यहोवा अपने लोगों के बीच निवास कर सके। दूसरा उद्देश्य यह था कि यह एक ऐसा स्थान था जहां उसके लोग, उसकी मंडली उससे मिल सके। तंबू की एक मुख्य विशेषता यह भी थी, यह दिखाई देता था, और इसे इसराइल के शिविर के केंद्र में रखा गया था। इसे लोगों को परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति की याद दिलाने के लिए रखा गया था। यह लोगों को अन्य देवताओं, मूर्ति पूजा से दूर रहने और यहोवा और केवल यहोवा की सेवा करने की याद दिलाने के लिए था। इसराइलियों का डेरा, जिसमें हजारों तंबू थे, तंबू के चारों ओर था और कबीलाओं को एक सटीक क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जो तंबू के चारों ओर सावधानी से रखे गए थे। पूर्व की ओर इस्साकार, यहूदा और जबूलून के तीन गोत्र थे, 166,000 पुरुषों से बना। पश्चिम की ओर मनश्शे, एप्रैम और बिन्यामीन थे, जिनमें 108-100 पुरुष थे। उत्तर की ओर डेरा डाले हुए थे आशेर, दान और नप्ताली और उनके 157,000 पुरुष, और दक्षिण की ओर 151,400 पुरुष थे, जो शिमोन, रूबेन और गाद के गोत्रों से बने थे। लेवियों को तंबू के सबसे करीब रखा गया था और उन्हें परिवार के अनुसार विभाजित किया गया था और चारों तरफ रखा गया था। तंबू और 12 गोत्रों के बीच एक आंतरिक घेरा के रूप में एक बफर क्षेत्र की तरह। लेवियों की गिनती 22,300 थी। ध्यान दें कि मैंने पुरुषों का जिक्र किया है। इसराइल की किसी भी जनगणना में केवल पुरुषों की ही गिनती की गई और तब भी केवल सेना में लड़ने में सक्षम पुरुषों की ही गिनती की गई। जो पुरुष बहुत छोटे, बहुत बूढ़े या विकलांग थे, उनकी गिनती नहीं की गई। इसलिए जब महिलाओं, बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों को जोड़ा गया तो उस तंबू के चारों ओर लगभग 3 मिलियन इजरायली थे। अब वह काफी बड़ा तंबू शहर था, है ना? तंबू के चारों ओर कबीलाओं के स्थान का क्रम यादृच्छिक नहीं था। 3 कबीलाओं का प्रत्येक समूह उन लोगों के एक साथ डेरा डालने का प्रतिनिधित्व करता था, जो एक दूसरे के सबसे करीबी रक्त संबंधी थे। उदाहरण के लिए मनश्शे और एप्रैम भाई अपने पिता यूसुफ के अधिकार को आगे बढ़ाते थे। वे बिन्यामीन के साथ जोड़े गए थे। बिन्यामीन और यूसुफ की एक ही मां थी, राहेल। इसलिए इन 3 कबीलाओं ने एक विभाजन बनाया और इसलिए एक साथ डेरा डाला।
शिमोन और रूबेन याकूब की पहली पत्नी लिया के बेटे थे। चूंकि लिया के दूसरे बेटे लेवी को पुजारी जनजाति के रूप में अलग रखा गया था, जिसे अब 12 कबीलाओं में से एक नहीं माना जाता, इसलिए गाद ने डेरे के संगठन में उसकी जगह ले ली। गाद क्यों? क्योंकि गाद लिया की दासी जिल्पा का बेटा था। यहूदा, इस्साकार और जबूलून लिया के सबसे छोटे 3 बेटे थे, इसलिए उन्हें एक साथ डेरा डालने के लिए व्यवस्थित किया गया।
दान और नप्ताली राहेल की दासी बिला से पैदा हुए थे। वे लिया की दासी के सबसे छोटे बेटे आशेर से पैदा हुए थे।
इसलिए शिविर लगाने का क्रम कबीलाओं के एक तरह के पदानुक्रम का संकेत था, और मुझे यकीन है क्योंकि विशेष रूप से जनजातीय व्यवस्था में खून निश्चित रूप से पानी से अधिक गाढ़ा होता था, इसलिए उन्हें इस तरह से समूहीकृत करके कबीलाओं के बीच परेशानी को कम से कम रखा गया था। अब मूसा, हारून और पुरोहित परिवारों, लेवियों और उनके उपसमूहों, मरारियों, कहातियों और गेरशानियों को तंबू के चारों ओर एक खाई की तरह घेरने के प्रतीकात्मक अर्थ पर ध्यान दें, और सभी 12 नियमित कबीलाओं को परमेश्वर के निवास स्थान से दूर रखा गया है। यहां हमारे पास मध्यस्थता की अवधारणा काम कर रही है। पुजारी अलग अलग लेवी जनजाति से लोगों और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ बनने वाले हैं। लोग सीधे परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, उन्हें यहोवा की व्यवस्था में पुजारियों के माध्यम से जाना होगा। इसलिए शिविर उस विचार का एक दृश्य प्रस्तुत करता है, 12 नियमित कबीलाओं के लोगों को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, या बेहतर उनके तंबू तक पहुंचने के लिए, सचमुच पुजारियों के शिविर से होकर गुजरना पड़ता है। और जिस तरह से यह काम करता था वह यह था कि लोग पुजारियों के पास जाते थे जो उनके लिए परमेश्वर के पास जाते थे। यह पूरी अवधारणा भविष्यवाणी थी और मसीह के सबसे महत्वपूर्ण सेवकाइयों में से एक का पूर्वाभास था। उसे हमारा महायाजक होना था, यहोवा और हमारे, उसके लोगों के बीच हमारा मध्यस्थ। हम सीधे पिता के पास नहीं जा सकते, इसलिए हम मसीहा के पास जाते हैं जो हमारे लिए पिता यहोवा के पास जाता है।
तीन कबीलाओं के प्रत्येक समूह या विभाजन, याद रखें तीन के चार समूह थे, में एक प्रमुख जनजाति, थी जो यहूदा पूर्व, एप्रैम पश्चिम, दान उत्तर और रूबेन दक्षिण थी। याद रखें मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि बाइबल में हमेशा पूर्व दिशा पर ध्यान दें, इसका लगभग हमेशा आध्यात्मिक महत्व होता है। तंबू को हमेशा इस तरह से स्थापित किया जाता था कि पवित्र स्थान पूर्व की ओर हो, और यहीं पर यहूदा स्थित था। यहूदा वह जनजाति जिसे याकूब के आशीर्वाद के अनुसार पूरे इज़राइल के लिए अधिकार रखना था, यानी यहूदा को सबसे प्रमुख जनजाति होना था जो अन्य सभी कबीलाओं पर शासन करती थी। और राजा यीशुआ किस जनजाति से आया था? यहूदा।
ध्यान दें कि शिविर के विपरीत छोर पर पश्चिम की ओर, लेकिन पवित्र स्थान के सबसे निकट एप्रैम का गोत्र था। एप्रैम को याकूब के आशीर्वाद के अनुसार विभाजित प्रथम जन में आशीर्वाद का दूसरा भाग दिया गया था, यानी जब यहूदा को इसराइल पर शासन करने का अधिकार दिया गया तो एप्रैम को गोत्र की संपत्ति और फलदायी होने का आशीर्वाद दिया गया, जिसे दोहरा भाग आशीर्वाद कहा जाता है। हमने उत्पत्ति 48, 49 और 50 में इसका बहुत ध्यान से अध्ययन किया। यह अध्ययन संपूर्ण बाइबल को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि आपने इसे मिस्र कर दिया है तो मैं दिल से सुझाव देता हूं कि आप इसकी सीडी प्राप्त करें। मुझे लगता है कि आप में से जो लोग उस विशेष अध्ययन से गुजरे हैं उन्हें यह काफी चौंकाने वाला लगा होगा।
इसलिए इन कबीलाओं को तंबू के चारों ओर रखने से बहुत ज्यादा भविष्य सूचक प्रतीकवाद और अर्थ जुड़े थे। मैं आपको कुछ और दिखाता हूं जो आपको पुराना नियम और नया नियम भविष्यवाणियों को समझने में मदद करेगा। चार प्रमुख या नेता कबीलाओं में से प्रत्येक के पास एक विशिष्ट प्रतीक, एक प्रतीक था जिसके द्वारा उन्हें जाना जाता था। वास्तव में सभी 12 कबीलाओं के पास ऐसा ही था। हम सभी जानते हैं कि यहूदा का प्रतीक शेर है। हम मसीह को यहूदा का शेर भी कहते हैं। वैसे एप्रैम जनजाति का प्रतीक एक नर बछड़ा, एक बैल था, जिसे कभी कभी नर बैल के रूप में दिखाया जाता था। दान का जनजातीय प्रतीक थोड़ा और रहस्यमय है, जैसा कि जनजाति स्वयं है। कभी यह एक सांप था, कभी एक उड़ने वाला सांप, और अधिक पारंपरिक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि यह एक चील था। रूबेन का प्रतीक एक आदमी, एक मानव था।
इसलिए चार प्रमुख नेता जनजातियां से, जो सभी 12 कबीलाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, प्रत्येक का एक प्रतीक था, एक शेर था, एक ऐसा लगता है कि एक चील था, दूसरा एक बैल या बैल था, और अंतिम एक आदमी या मानव था। और इन कबीलाओं ने परमेश्वर के सांसारिक निवास स्थान तंबू को घेर लिया। उन्होंने बाहरी लोगों से परमेश्वर के पवित्र स्थान की रक्षा की, और प्रभु ने उन्हें उनके शत्रुओं से बचाया। बाइबल में कुछ भी अकेला नहीं है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। इसे समझाने के लिए यहेजकेल 1:10 देखें। यहेजकेल एक भविष्यवक्ता था जो मूसा के समय से लगभग 700 साल बाद जिया था। ऐसा लगता था कि परमेश्वर कभी कभी दर्शन के माध्यम से यहेजकेल से संवाद करता था, और उसके कुछ दर्शन वास्तविक लूलू थे। यहेजकेल के पहले अध्याय में जो दर्शन हुआ वह स्वर्ग और परमेश्वर के सिंहासन क्षेत्र के दृश्य से शुरू होता है, और यह चार जीवित प्राणियों के बारे में बताता है। उनके चार पंख और चार चेहरे थे। अब यहेजकेल 1:10 पर ध्यान दें उनके चेहरों की बनावट के लिए। उनके सामने मानवीय चेहरे थे, चारों में से प्रत्येक के दाईं ओर एक शेर का चेहरा था, प्रत्येक के बाईं ओर एक बैल का चेहरा था, और चारों में से प्रत्येक के पीछे की ओर एक उकाब का चेहरा था। और हमें बताया गया है कि जहां कहीं भी परमेश्वर का आत्मा गया वे भी वहां गए।
हम चारों जीवित प्राणियों में से प्रत्येक के चेहरे शेर, चील, बैल और मनुष्य के थे। अब हमने वही प्रतीक कहाँ देखे? ठीक है, वे इसराइल के चार प्रमुख कबीलाओं के प्रतिनिधि प्रतीक थे। संयोग इससे भी बढ़कर, जैसे जहां कहीं भी परमेश्वर की आत्मा के साथ तंबू जाता था, इसराइली उसके साथ जाते थे, इसलिए ये अजीब जीव जहां कहीं भी परमेश्वर की आत्मा जाती थी वहां जाते थे।
एक और बात पर गौर करें, शेर दाईं ओर था। बाइबल में किसी भी चीज का दाहिना भाग सबसे अच्छा, प्रभावशाली, सबसे मजबूत या सबसे महत्वपूर्ण होने का प्रतीक था, और कभी कभी यह पवित्र स्थिति भी थी। उदाहरण के लिए, आपका दाहिना हाथ, आपकी दाहिनी आंख, आपका दाहिना पैर सबसे अच्छे या सबसे महत्वपूर्ण होने का प्रतीक था। बायां भाग कम महत्व का प्रतीक था। दायां भाग भी पूर्व के बराबर था। दायां भाग प्रमुख और पवित्र था, पूर्व भाग प्रमुख और पवित्र था। सिंह जीवित प्राणी के दाएं भाग पर था, यहूदा तंबू के दाएं भाग पूर्व की ओर डेरा डाले हुए था, बाईं ओर पश्चिम के बराबर था। बैल का चेहरा जीवित प्राणी के बाईं ओर था, ठीक वैसे ही जैसे एप्रैन, जिसका प्रतीक बैल है, तंबू के बाईं ओर पश्चिम की ओर डेरा डाले हुए था। जीवित प्राणी के सामने या दक्षिण की ओर एक आदमी, एक मानव था। एक आदमी रूबेन का प्रतीक था, जो तंबू के सामने या दक्षिण की ओर डेरा डाले हुए था, और अंत में जीवित प्राणी के पीछे पीछे की ओर एक उकाब का चेहरा था। उकाब दान का प्रतीक था, जो तंबू के पीछे उत्तर की ओर डेरा डाले हुए था। ओह, लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। अब प्रकाशित वाक्य 4:6 पर हैं। प्रकाशित वाक्य 4:5-8 पढ़े।
यह यूहन्ना को दिया गया एक दर्शन है, जो आश्चर्य की बात नहीं है। यह यहेजकेल के दर्शन से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों ही स्वर्ग और परमेश्वर के सिंहासन के दर्शन थे। अब याद कीजिए, तंबू का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यह पृथ्वी पर परमेश्वर का निवास स्थान था, और मूसा को परमेश्वर द्वारा दिखाए गए नमूने के अनुसार तंबू बनाने के लिए कहा गया था। तंबू परमेश्वर के स्वर्गीय आध्यात्मिक निवास स्थान के नमूने के अनुसार बनाया गया एक सांसारिक भौतिक प्रतिरूप था। वैसे अदन का बगीचा परमेश्वर के स्वर्गीय निवास स्थान का एक भौतिक सांसारिक प्रतिरूप था।
इसलिए प्रकाशित वाक्य 4 एक बार फिर इन जीवित प्राणियों या जीवित प्राणियों के बारे में बात करता है। फिर से ध्यान दें कि ये प्राणी किससे बने हुए प्रतीत होते हैं, एक शेर, एक बैल या सांड, एक मानव या मनुष्य और एक उकाब। तो यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य में ये जीवित प्राणी एक ही प्राणी हैं, और वे सीधे इसराइल के चार प्रमुख कबीलाओं से जुड़े हुए हैं, जो पूरे इसराइल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में जीवित प्राणियों का सीधा संबंध है, यहां तक कि किस दिशा में जीवित प्राणी के किस तरफ प्रत्येक चेहरे को रखा जाता है। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसराइल की कबीलाओं को तंबू के चारों ओर रखा जाता है। तो फिर से हम द्वैत की इस अद्भुत वास्तविकता का सामना करते हैं। यहेजकेल और यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के दर्शन स्वर्ग के थे, या अधिक विशेष रूप से स्वर्ग में परमेश्वर के निवास स्थान के थे। जीवित प्राणी परमेश्वर के लिए किसी प्रकार के संरक्षक या सेवक आत्मा हैं, और वे हमारे चारों ओर रहते हैं। उसका सिंहासन, इसीलिए परमेश्वर का भौतिक निवास स्थान परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन, परमेश्वर के आध्यात्मिक निवास स्थान की छवि में बनाया गया था। इसराइल के चार प्रमुख कबीले आध्यात्मिक प्राणियों के भौतिक मॉडल थे, यहां तक कि जिस तरह से वे उसके सांसारिक निवास स्थान और उसके स्वर्गीय निवास स्थान को घेरे हुए थे और उसके साथ चलते थे। संभवतः यही कारण है कि विभिन्न इजरायली कबीलों ने अपने प्रतीकों को जीवित प्राणियों के प्रतीकों के अनुसार बनाया था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक कबीले को परमेश्वर की सेवा के संबंध में एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना था।
अजीब है ना, इसे मत भूलना। हालांकि यह जानकारी बाइबल ट्रिविया के खेल में आपके दोस्तों को चौंका सकती है, लेकिन यह भविष्यवाणी को समझने में भी महत्वपूर्ण है ना। तो अचानक उन अजीब जीवित प्राणियों को समझना इतना मुश्किल नहीं रह जाता। अगले सप्ताह हम निर्गमन अध्याय
25 का अध्ययन शुरू करेंगे।